देखते हैं जिस्ट को, निचोड़ को सूरा फातिहा के, इय्याके नअबुदु व इय्याके नस्ताईन। इय्याका सिर्फ तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं। जब इतनी बड़ी डिक्लेरेशन आ गई तो समझने की जरूरत है कि इबादत क्या चीज है जिसका हम इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। लेकिन पिछली तीन आयात में हमने क्या बात की, अल्लाह ताला की हम्द बयान की, उसकी तारीफ की और ये डिक्लेयर किया कि वो ही मालिक है यौमद्दीन का। जब हमने ये तीन बातें कर दी, तीन आयात में असल में चार बातें हैं जो अल्लाह ताला की सिफात हैं और उस वजह से वो तारीफ के काबिल जात है। जब हमने ये सिफात बयान की, इसके बाद अब हमारा दिल क्या करता है कि हम ये बात का इतराफ करें और कुछ कहें अब अल्लाह ताला को। देखें, अब एक तारीफ करके फिर बैठ जाना ये तो कोई बात नहीं है। अब आपने तारीफ कर ली, क्यों तारीफ, क्योंकि अल्लाह वो तो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह वो तो रहमान है, अल्लाह वो तो रहीम है, अल्लाह वो है जो मालिक यौमिद्दीन है, तो उस अल्लाह की मैं तारीफ बयान करती हूँ। उसके बाद क्या, बस नहीं, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अब हम क्या एक्शन लेते हैं। उसके बाद खुद ब खुद इंसान फिर कहता है ऐसा रब जो है फिर मैं इबादत उसकी करता हूं। ये राज है सूरह फातिहा का, इसलिए उसको गौर से समझिएगा। मैं उस अकेले रब की, जब हमने कह दिया ना इया का, तो फिर हमने कह दिया उस अकेले रब की मैं इबादत करता हूं। और इसके अंदर बड़ी एक जबरदस्त हिकमत है जो इसकी फॉर्मेशन में है, यानी ये जो आयत का ये हिस्सा है ना इया का, इसके अंदर जो वैसे ये होना चाहिए था नअबुदु का, हम इबादत करते हैं तेरी, सिर्फ ये पूरा जुमला हो जाता, इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन का को पहले लाया गया और साथ इया आ गया। यूजुअली ऐसा जुमला नहीं होता, लेकिन जब ऐसे इसको चेंज किया गया, इसकी फॉर्मेशन को, इसके स्ट्रक्चर को बदला गया, तो इसमें बड़ी हिकमतें। नअबुदु का कहने में क्या था, हम इबादत करते हैं तेरी, लेकिन जब हम कहते हम इबादत करते हैं तेरी, तो इसमें ये भी हो सकता था हम इबादत करते हैं तेरी और किसी और की भी कर लेते हैं कभी कभी। लेकिन जब हमने कहा इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, तो अब इसमें ये आ गया कि और किसी की भी नहीं करते, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं अल्लाह। समझ आई दूसरी हिकमत इसमें क्या है। का को पहले लाया गया, का कौन है, तेरी कौन है, अल्लाह ताला। तो इंसान अपनी इबादत को पहले अहमियत ना दे कि मैं इबादत, अगर होता नअबुदु हम इबादत करते तो हम पहले आता, फिर अपनी इबादत की बात आती, फिर तेरी आती। लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्लाह तेरी बात पहले, मैं बाद में, मेरी इबादत की क्या अहमियत है, अल्लाह तेरी जात पहले, तो इय्याका फिर उसके बाद नअबुदु। ठीक, बात हो गई, समझ आ गई है। अच्छा, फिर दूसरा, तो मैंने अभी आप तक आपको दो बातें बताई, एक आपको पहले क्या बताई, ये हसर आ गया इसमें, यानी सिर्फ तेरी का माना आ गया, सिर्फ तेरी का। और दूसरा क्या, अल्लाह ताला की जात को पहले रखा। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात इसमें देखें, यहां पे या का कह के हमने क्या कहा, नअबुदु हम इबादत करते हैं, जमा का सीगा आ गया, यानी ए अल्लाह तेरी सारी मखलूक तेरी इबादत करती, हम सब तेरी इबादत करते हैं, मुसलमान और जितने भी यानी मखलूकात हैं तेरी, हम सब तेरे गुलाम हैं। चलो काफिर अगर नहीं भी ये डिक्लेयर करता, लेकिन जो भी मुसलमान है वो सब एक जुबान है, अल्लाह हम तेरी इबादत करने में सब इकट्ठे हैं, अल्लाह हम सब तेरी इबादत करते हैं, इसमें एक रिश्ता भी आ गया, कि दूसरे मुसलमानों के साथ जो हमारा रिश्ता है भाईचारे का, हम एक उम्मत है और अल्लाह हम सब तेरी इबादत में लगे हैं। दूसरी इसमें क्या बात है कि अल्लाह तू तो अकेला है, तू अकेला है और इधर इबादत करने वाले अकेले नहीं, कोई एक नहीं है, आबुदू नहीं है, ना आबुदू हम सब हैं, हम सब तेरी इबादत करने में लगे हैं। देखें अब यहां से ये पता चल गया कि एक तौहीद की बात आ गई कि अल्लाह तू तो वाहिद है, तू तो अहद है, तू तो यकता है और इबादत करने वाले तेरे बेशुमार हैं, बहुत सारे हैं। समझ आई? अब आते हैं इबादत की तरफ, इस लफ्ज की तरफ। क्या चीज होती है इबादत जिसका इतना बड़ा हम दावा कर रहे हैं? इबादत नाम है गुलामी का। इबादत लफ्ज अब्द से बना है और अब्द में क्या होता है? गुलामी का माना आता है। और जो गुलाम होता है वो कितनी देर का गुलाम होता है बताइए? 9 to 5 जॉब करता है या 24 आवर का गुलाम होता है? गुलाम तो खरीदा हुआ होता है ना, वो तो उसकी जॉब कब तक होती है? हमेशा। रात है या दिन है, सुबह है शाम है, हालात कैसे भी हैं, अब्द जो है, गुलाम जो है, वो अपनी मर्जी नहीं करता, वो अपने आका की मर्जी पर चलता है। तो इस लफ्ज में गुलामी का माना है और इस लफ्ज में गुलामी से ही आप देख सकते हैं हकीकी इबादत जो है ना। दरअसल उलमा कहते हैं अल्लाह ताला के आगे इजहारे जिल्लत का नाम है। गुलामी में भी तो जिल्लत ही होती है ना, इज्जो इनकसारी तजल्लुल कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी हस्ती कुछ नहीं है। इबादत के माने में एडवांस के स्टूडेंट लिख लें, गायतुल हुब्बी माअज़्ज़ुल। इबादत के माने में दूसरी चीज जो आती है गायतुल हुब, मोहब्बत की इंतहा, माअज़्ज़ुल तज़ल्लुल के साथ, यानी अपनी इज्जो इनकिसारी, अपनी जिल्लत और अल्लाह ताला से बे इंतहा मोहब्बत। देखें जो गुलाम होता है ना, आम दुनिया का कायदा जो है कि गुलाम जो होता है वो मोहब्बत कभी नहीं करता अपने आका से। उसकी क्या कोशिश होती है? उसकी कोशिश यही होती है कि कब मेरी ये गुलामी खत्म हो, मैं आजाद हूं, मैं कहीं जाऊं, मैं निकलूं, इस तौक को गले से उतारूं गुलामी का जो। लेकिन जो अल्लाह का गुलाम होता है इबादत में और गुलामी में यही तो फर्क है, वरना हम इबादत जो लिखते हैं अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं उसको लिखते हैं पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वो हम क्यों नहीं लिखते हैं अल्लाह हम तेरी गुलामी करते हैं? क्योंकि गुलामी सिर्फ अकेला लफ्ज इसको बता नहीं सकता, क्योंकि इबादत में सिर्फ गुलामी का माना नहीं है। अगर सिर्फ गुलामी का हो तो फिर तो हम भाग जाना चाहें इससे, लेकिन इबादत में क्या है? इंतहा दर्जे की मोहब्बत है। यानी जब हम कहते हैं इय्याक नअबुदु तो हम दरअसल क्या कह रहे होते हैं? अल्लाह मैं सिर्फ तुझसे बे इंतहा मोहब्बत करती। देखिए मैंने आपको दो माने बताए ना, दो चीजें बताई, मोहब्बत की इंतहा तजल्लुल के साथ, आजी ताजीम, तो मैं तुझसे बे इंतहा मोहब्बत करती हूँ और साथ आजी ताजीम, तेरे आगे झुकी नहीं हूं, मेरी हस्ती कुछ नहीं है, ये माना है इसके अंदर। बाज़ उलमा ने कहा कि मोहब्बत और खौफ का माना भी इसके अंदर है। यानी अक्सर आप देखें जिससे आपको मोहब्बत होती है उसे खौफ नहीं होता, जिनसे खौफ होता है तो उनसे फिर मोहब्बत नहीं होती। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है जिसमें ये दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं जब उसकी इबादत इंसान करता है, कि अल्लाह से मोहब्बत भी बे इंतहा और उसका खौफ भी कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, वो इतनी बड़ी हस्ती है मैं कुछ नहीं हूं उसके आगे। माना सेम ही है, खौफ कह लें, तजल्लुल कह लें, अपनी जिल्लत, अपनी आजजी कह लें, इंकसारी कह लें। यानी इंसान जब ये समझ जाता है ना कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी हस्ती कुछ नहीं, तू ही है अल्लाह जो सब कुछ है, तू ही है बड़ा, तू ही है अजीम और मैं हकीर हूं, ये है इबादत का माना। कभी आपने ये सोच के या का नाबुदु कहा है और कभी ये सोच के इबादत की है? अक्सर लोगों को तो अल्लाह से मोहब्बत का कुछ पता ही नहीं होता, बस वो अल्लाह को क्यों मानते हैं, क्योंकि एक मुसलमान घर में पैदा होकर बस। और पता है कि एक अल्लाह है, जब हमने कोई चीज जरूरत पड़ेगी तो फिर उससे दुआ करनी होती, बस इतना हद तक पता। इससे आगे मोहब्बत का जो एक ताल्लुक होता है ना, वो बना ही नहीं है अल्लाह ताला के साथ, क्योंकि अल्लाह को क्या समझते हैं, बस एक हमारी जरूरत पूरी करने वाला। जैसे कि हम कोई, जब हम बैठे हैं इंटरनेट पे तो हम शॉपिंग करते हैं, तो कोई ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ऑर्डर हमारे घर आ जाता है, तो हमने ऑर्डर कर दिया अमेजोन पे जाके कहीं जाके, तो इसी तरह हमने अल्लाह को ऑर्डर दे दिए नाउज़ुबिल्ला, और अब वो बस हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ इतना ताल्लुक है अल्लाह के साथ। हालांकि इबादत के माने में ही मोहब्बत है। कभी मोहब्बत करके देखिए अल्लाह से, क्या उसके साथ भी मोहब्बत होती है? हाँ, हमने मोहब्बतें की हैं तो बच्चों से की हैं, घरों से की हैं, माँ बाप से की हैं, पैसे से की हैं, चीजों से की हैं। कभी अल्लाह से मोहब्बत करके देखिए कि वो भी उसमें क्या लज्जत होती है। ये मोहब्बत जो इसका मजा पा ले तो दुनिया की हर मोहब्बत फिर पीछे रह जाती है। देखिए, जब इबादत के अंदर आप ये चीज समझ जाएंगे ना, इंतहा दर्जे की मोहब्बत, एक्सट्रीम मोहब्बत, तो मुझे आप सिर्फ ये बात बताएंगे मोहब्बत क्या क्या करवाती है। ये तो पूछने की जरूरत नहीं, मोहब्बत क्या क्या करवाती है फिर। हाँ, मोहब्बत फिर वो होती है कि फिर आतिशे नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूद गए ना, तो वो मोहब्बत की इंतहा थी। फिर इंसान आग में भी कूद जाता है बेखतर, फिर इंसान क्या कुछ नहीं करता। ये मोहब्बत ही होती है कि इंसान रातों को जाग भी लेता है किसी के लिए, ये मोहब्बत ही होती है कि इंसान भूखा भी रह लेता है किसी के लिए, ये मोहब्बत भी होती है कि इंसान अपने ऊपर मुश्किल उठा के बस चाहता है कि दूसरे को नहीं, कोई मेरी वजह से परेशानी हो। ये मोहब्बत ही होती है कि इंसान को कहता है कि दूसरा कभी नाराज ना हो जाए। सारा राज ही इस मोहब्बत में है, और इबादत के अंदर है ही इंतहा दर्जे की मोहब्बत। हम इबादत 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 रट लेते हैं ये लफ्ज, लेकिन हमें नहीं पता कि मोहब्बत क्या है। हम नहीं जानते इबादत की रूह क्या है। हमने नमाजें भी पढ़ ली, हमने रमजान के रोजे भी रख लिए, हम हज उमरे को भी चले जाते हैं, इबादत हो रही है जी, इबादत हो रही है। तो भाई, इबादत की रूह क्या है ये भी कभी जानना, इसके पीछे कोई मोहब्बत है वो भी कभी जानना। हाँ, बस करना है ना, वो हज सब करते हैं, फर्ज है ना, इसलिए कर लिया। हाँ, नमाज भी पढ़नी है ना, माँ बाप ने डंडे से पढ़ा दी, अब बस एक आदत डाल दी है तो अब पढ़नी है, और रोजे सभी रखते हैं तो रख लिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ पता ही नहीं। इबादत की रूह को तो समझो लोगों, जो नमाज पढ़ते हो दिन में कितनी दफा ये दोहराते, या कनाबुद हुआ या कनस्तान, फिर भी समझ ना पाए कि इबादत क्या है, फिर भी समझ ना पाए कि इसमें मोहब्बत चाहिए। और मोहब्बत उसी से होती है जिसको इंसान जानता है, जिसको जानते ही नहीं उससे कहां मोहब्बत होती है। हाँ, होगा कोई, आप वो कह दें कोई फलानी जगह एक रहता है बंदा, आप वो कह उसे कि बताने से मोहब्बत हो जाएगी। जब तक आपको ये ना बताया जाए वो कैसा है, वो आपके बारे में कितना केयरिंग है, वो आपका कितना पूछता है, तब मोहब्बत होती है। जब उसको जानते हैं, जब अल्लाह को जानना ही नहीं सारी जिंदगी, तो मोहब्बत भी कैसे पैदा होगी। हमारा भी कसूर नहीं, आपका भी कसूर नहीं, जाहिर है ना, कभी किसी ने सिखाया ना ये पढ़ाया, ना किसी स्कूल ना किसी कॉलेज किसी जगह पे ये नहीं सिखाया जाता मोहब्बत अल्लाह से भी करनी है। और वो मोहब्बत क्यों होनी चाहिए, जिसने अल्लाह को पहचान लिया ना, जान लिया, वो उसको कहने की नहीं जरूरत होगी कि मैं कहूँ आज से आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी, नहीं, फिर वो मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। फिर इंसान कहता है कैसे ना ऐसी जात से मोहब्बत करूं, इससे ज्यादा तो मोहब्बत करने के काबिल कोई है ही नहीं, कैसे ना करूं उससे मोहब्बत। फिर इंसान ये पूछता है कैसे ना करूं मोहब्बत, फिर ये नहीं कहता अच्छा मोहब्बत करनी है, अच्छा इबादत का मतलब ये होता है। پھر جب اس کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اپنی ذات کچھ نہیں لگتی، پھر اپنی ہستی کچھ نہیں لگتی، پھر ذلت آتی ہے کہ میں کتنا ذلیل ہوں، میں کتنی گری ہوئی ہوں، میں کتنی حقیر ہوں، میں ناچیز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب اس کو پہچانتے ہیں تو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے اپنی ذات کی بھی، یہ میری کیا حیثیت ہے. پھر بنتی ہے عبادت. یہ عبادت نہیں ہے جو ہم منہ سے یا کنابدو کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بتا رہے ہیں، ہم تو اللہ سے ایک عہد کر رہے ہیں. جب ہم یا کنابدو کہتے ہیں نا، نابدو کیا ہے، اب وہ میں آپ کو گرامر نہیں پڑھا رہی، لیکن جسٹ ایک آپ کو اس کی بیوٹی بتانے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ عربک کے اندر دو ہی ٹینسز ہوتے ہیں. دیکھیں اردو میں، انگلش میں پریزنٹ پاسٹ فیوچر ہوتے ہیں، ماضی حال مستقبل. عربک میں یا تو ماضی ہوتا ہے یا ایک سیگا ہے جس کو گزارے کہتے ہیں، اس کو وہ اسی کے اندر پریزنٹ بھی ہے، اسی میں فیوچر بھی ہے، اسی میں حال کا معنی بھی اور مستقبل کا بھی. جب ہم کہتے ہیں نا نعبدو، تو یہ مضارے ہے. مضارے مینس ہم اس وقت بھی تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیری عبادت کرتے رہیں گے، عہد کر لیا اللہ کے ساتھ ہم کرتے ہی رہیں گے. تو آپ تو یہ مان رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ جب تک میری ہستی ہے ہم سب تیری عبادت کرتے رہیں گے. کیوں؟ تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تیرے اندر یہ خوبیاں ہیں، تیری یہ صفات ہیں جو ابھی میں نے بیان کی. اللہ پھر اور کون عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات میں ہستی جس کی عبادت کی جا سکے. تو ہم سب اب تیری عبادت کریں، جیسے ایک ترانہ پڑھ رہے ہیں، سب ایک آواز ہو کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے نا، وہ دنیا میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا. چاہے ایک موحد دنیا میں رہ جائے، ایک توحید والا دنیا میں رہ جائے، وہ بھی اکیلا نہیں ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھے گا؟ کیوں اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میں اکیلا نہیں ہوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات ہے اس کے ساتھ، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جب عالمین میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ عالمین میں کون کون ہے، ہر کوئی عالمین میں سوائے اللہ کی ذات کے، وہ سبھی ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ سبھی اللہ کے آگے جھکے ہیں. اب خود بتائیے کہ اس کے بعد کوئی توحید والا کبھی اکیلا ہو سکتا ہے؟ کوئی مومن کبھی اکیلا ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اکیلے اس ملک میں، دیکھیں ہمارے لیے کتنے مشکل ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، پوری کائنات ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ پوری کائنات اس اللہ کی عبادت کرتی. اب سمجھ آئی عبادت کیا چیز ہے؟ ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہم ایک وعدہ اللہ سے کر رہے ہیں، ہم کریں گے تیری عبادت. تو آپ نے تو ایک عہد کر لیا، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو یہ مان لیا کہ اللہ تیری عبادت آج بھی ہے اور کل بھی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہے، اور جب تک میری ہستی ہے تب تک ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، بتائیں اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو کتنی، اگر دل سے انسان کہے سمجھ کے، کتنی بڑی بات کہتی اس نے. یہ غلامی اب تیری ہوگی اللہ، نہ برادریوں کی غلامیاں، نہ پیروں مرشدوں کی غلامیاں، نہ لوگوں کی غلامی، نہ میرے خاندان کی غلامی، نہ بچوں کی غلامی، کس کی غلامی ہوگی؟ صرف تیری. تو سب کو تو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، پھر کیوں کہتے ہیں یہ سارا دن یہ بول بول کے ادھر سلام پھیرا، ہائے کیا کروں ہسبینڈ نہیں مانتے، ہائے کیا کروں بچے نہیں مانتے. آپ نے تو ابھی یہ اقرار کیا اللہ غلامی ہوگی تو صرف تیری. یاد رکھیے عبادت کے اندر معنی ہے اطاعت کا، اطاعت کا معنی اس کے اندر ہے. یعنی آپ اس کی دلیل، آپ کہیں گے کہ دلیل لے کر آئیں کہاں سے، جب قرآن میں یہ آیت اتری کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ اپنے علماء کی عبادت کرتے تھے، تو عدی بن حاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرماتے ہیں ہم تو نہیں اپنے احبار رہبان اور ان کی عبادت اپنے علماء کی کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو وہ چیزیں حلال کرتے تھے تم ان کو حلال نہیں کہتے تھے، جو وہ حرام کرتے تھے تم ان کو حرام نہیں کہتے تھے؟ کہتے ہیں ہاں ایسے ہی کہتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہی تو عبادت ہے ان کی, یعنی ان کی اطاعت کرنا. جس چیز کو وہ سیاہ کہہ دیں آپ نے کہنا یہ سیاہ ہے, جس کو کہتے ہیں سفید آپ نے کہنا یہ سفید ہے. اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج سے یہ ڈریس پہننا شروع کر دو جس میں ٹخنے ننگے ہیں, تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہی اب حلال ہے, یہی اب صحیح ہے, یہی اب حق ہے. اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج سے سلیو لیس پہنا کریں گے یہی فیشن ہے, تو آپ کہتے ہیں یہی حق ہے, یہی صحیح ہے, یہی جائز ہے. تو عبادت کس کی فیشن کی یا لوگوں کی؟ یہی عبادت ہے نا. جو کسی نے کہہ دیا ویسے ہی چلنے لگے. اگر لوگوں نے کہہ دیا کہ آج کل تو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا حجاب لینا, تو آپ نے بھی یہی سوچ لیا, آپ نے بھی کہا ہاں واقعی یہ آج کا دور تو اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر ایسا کیا جائے, تو آپ نے کس کی عبادت کی؟ اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سود تو جائز ہے, سود کے بغیر تو آج کل کمائی نہیں ہو سکتی, تو آپ نے اسی چیز کو جائز سمجھ لیا. تو عبادت کس کی تھی؟ جس کی انسان اطاعت کرتا ہے اللہ کے سوا, تو وہ ہی اس کا معبود بن جاتا. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے, فرمایا ہلاک ہو گیا عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا عبد الدینار, درہم کا بندہ, دینار کا بندہ. آج ڈالر کے بندے بھی تو ہیں نا, وہ ڈالر کے غلام ہیں, وہ اس کے عبد ہیں. عبد الدرہم, عبد الدینار کہا, تو عبد کیا ہوتا ہے؟ تو نے ابھی آپ کو بتایا نا, عبد سے ہی تو عبادت ہے. تو جب عبد الدرہم عبد الدینار آپ نے کہہ دیا, تو یعنی اس کے بندے بن گئے, ان کی عبادت اس کے لیے ہے. وہ پیسہ جہاں سے بھی آئے گا, حلال سے آئے حرام سے آئے, وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اس کی بس اس کی پوجا کرتے ہیں, ان کو بس پیسہ چاہیے. تو انسان صرف عبداللہ نہیں ہوتا, وہ عبد الدرہم بھی بن جاتا ہے, عبد الدینار بھی بن جاتا ہے, اور عبد الڈالر بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, پتا بھی نہیں چلتا اس کو کہ جب وہ بدل لیتا ہے اپنا قبلہ اور کس کا جا کے غلام بن گیا. آج کوئی والدین کے غلام ہے, والدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی نافرمانی کے کوئی کام کو کہہ رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. کوئی شوہر کی غلام بنی ہوئی عورتیں, کوئی بچوں کے غلام بنے. آج تو ہم نے بہت ساری غلامیاں لے لیں, گلے میں یہ توک ڈالے ہیں غلامی کی, ان کی ہاں اور نہ کے بغیر ہم نہیں کچھ کرتے. وہ جائز کہیں نہ جائز کہیں, جو بھی کہیں گے بس وہی مان. اب ہم کہیں گے یہ تو اللہ کا حکم ہی ہے والدین کی ماننا, اللہ کا حکم ہی ہے شوہر کی ماننا. اللہ کا حکم ان چیزوں میں ان کی ماننے کا ہے جن چیزوں میں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کہہ رہے ہیں. اگر وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہتے ہیں, کوئی گناہ کا کام کرنے کو کہتے ہیں, تب تھوڑی ان کی مان لینی, کیونکہ ان کی بھی ہم کیوں مانتے ہیں؟ ان کی اسی صورت میں مانتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی فرمانبرداری کی باتوں میں سے کوئی بات کہہ رہے ہیں. ان کی تبھی مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی مانو, تو اس لیے ہم مان رہے ہیں. لیکن اصل ہم کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ کی بات, کیونکہ اللہ تو نے کہا نا ان کی مانو, تو تب میں مان رہی ہوں. تو عبادت بہت گہرا لفظ ہے, بہت زیادہ گہرائی ہے اس کے اندر, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں عبادت اتنا جامع لفظ ہے, عبادت نام ہے ہر اس قول کا اور ہر اس عمل کا جو اللہ کو پسند ہو, چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو. ظاہری میں کیا ہے؟ ظاہری میں مثلا ہے آپ کی نماز ہے, روزہ ہے آپ کی, یہ سب چیز. اور باطنی اعمال, عقیدہ, محبت, عداوت, دشمنی, اخلاص, توکل, یہ سب, یعنی ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو, جو بھی عمل اللہ کو راضی کرنے والا, اللہ کو پسند کرنے والا, وہ عبادت ہے. اور ہم اللہ کی نافرمانیاں کر کے سوچتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں, عبادت ہو. اور کتنی بڑی جھوٹ کی بات ہم بولتے ہیں جب ہم اوروں کی عبادت کر رہے ہیں اور کہیں ایاک نعبد, بڑی خوبصورت لے میں میں نے تجوید بھی سیکھ لی ہے, اب دیکھو میں کتنی اچھی تلاوت کرتی ہوں, بس خوبصورت خوبصورت آواز کر کر کے پڑھ لینا, ایاک نعبد کا حق نہیں ادا کرتا. जब तक कि हम वाकई इबादत को समझे नहीं, और हम ये नहीं कहें कि इय्याका का लफ्ज इतना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको कह रही नाबुदु का भी हो सकता था, हम अल्लाह तेरी इबादत करते हैं साथ इन लोगों की भी कर लेते, साथ जो लोग भी कहते हैं उनको भी राजी तो हमने करना है ना, ऐसा नहीं है। इय्याका को समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे, तो इसलिए इस चीज को समझते भी अल्लाह की इबादत करनी है, और इस चीज को समझते भी ये समझना है कि इसके बाद, इस डिक्लेरेशन के बाद अब ये नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह की तो नहीं मानूंगी बाकी सबकी मानूंगी, ये नहीं हो सकता। जो इस लफ्ज को समझ जाए, वो समझ ले कि जहां कहीं टकराव होगा, एक तरफ अल्लाह की बात है और एक तरफ किसी और की बात है, तो मैं अल्लाह की बात मानूंगी, दूसरे की बात छोड़ दूंगी, चाहे वो मेरी दोस्त है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई भी है। खुशी है या गम है, अल्लाह में तेरी गुलामी करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुलाम सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइम का नहीं होता, और हम सिर्फ अल्लाह की गुलामी कब करते हैं, जब रमजान आ जाता है। क्या ख्याल है ना, जब रमजान आता है फिर हम अल्लाह की गुलामी करते हैं, जब रमजान खत्म हो जाता है तो फिर आप गुलामी को छोड़ो, आप क्या, तब हम बहुत अच्छे बन जाते हैं। क्या आप अल्लाह के गुलाम सिर्फ रमजान के लिए, हम तो सारा साल हर दिन कहते हैं इय्याका नाबुदू, हम हर दिन कहते हैं और कितनी दफा कहते हैं, और गुलामी सिर्फ रमजान में, ये कैसा गुलाम है जो रमजान के रमजान आता है और उसके बाद चला जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक दे, क्योंकि फिर पूरा कुरान जो है ना, ये इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन की आगे तफसीर है, ये कैसे इबादत करनी है, कैसे अल्लाह को राजी करने वाले काम करने हम इबादत करते हैं। ये पूरा कुरान ही आपको सिखाएगा अल्लाह से मोहब्बत कैसे होती है, अल्लाह का तारुफ है। फिर उसके बाद व इय्याका नस्ताईन, अब जब मैं अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ ना अल्लाह, मैं नहीं कर सकती अल्लाह, मेरे अंदर खुद के अंदर ताकत नहीं है, क्यों, इसलिए कि शैतान इंसान के साथ लगा हुआ, शैतान इंसान को बरगलाता है। जब मैंने आपको शुरू में तआवुज़ का माना बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि शैतान किस तरह से हमले करता है, खास तौर पे इंसान नेकी के रास्ते पर जाने लगे फिर तो बहुत ही, अब जब इंसान ने कह दिया इय्याका नाबुदु तो शैतान आराम से बैठेगा क्या, नहीं, जब वो हमले करेगा अब हमें कौन बचा सकता है, अल्लाह अब हमें तेरी मदद चाहिए, हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं क्योंकि सिर्फ तू ही मदद कर सकता है। तो अल्लाह के हुक्मों पे चलना, अल्लाह की इबादत करना, इसमें नफ्स भी हायल होगा, इसमें माहौल भी आपको ऐसा होगा कि जिसमें आपको जाहिर है पीछे खींचने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे, इसमें शैतान भी बहकाएगा, तो अल्लाह से मदद मांग ले। अल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तेरे हुक्म मानने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कभी मेरे घर वाले मना करते हैं, कभी लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, कभी फलां खड़ा हो जाता है और कभी फलां, अल्लाह तू मेरी मदद करना, हम तेरी मदद चाहते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। फिर देखिए इसमें हम का माना आया, अल्लाह ताला ने क्यों नहीं सिखा दिया मैं मांगती हूँ मदद, इसलिए कि अल्लाह को पता है कि इंसान अकेला जो है ना इस रास्ते पर चलेगा तो अकेला कोई चल ही नहीं पाता, उसके साथ जरूर ऐसे लोग होने चाहिए जो उसकी सपोर्ट बने। जब मोमिन एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं ना, जुड़ के रहते हैं, तो एक दूसरे की मददगार बन जाते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट बन जाते हैं, और उस सपोर्ट के नतीजे में क्या होता है, इस रास्ते पे चलना आसान हो जाता है, इबादत आसान हो जाएगी, अल्लाह के हुक्मों को मानना आसान हो जाएगा। आप देखिए ना, आपकी अगर ऐसी दोस्तें हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचती हैं, आपको डिस्करेज करती हैं, तो आप दो दिन सुनते हैं, चार दिन सुनते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ वाकई ये सही तो कह रही है, फिर आप भी उनकी बातों में आ जाते, चौथे दिन आप भी ढीले पड़ने शुरू हो जाते। लेकिन अगर आपके साथी ऐसे हैं जो इनकरेज करने वाले हैं, आपको ऐसा माहौल मिला हुआ है, तो आप आगे ही बढ़ते जाते हैं, आप पीछे होने भी लगते हैं तो वो कहते हैं क्यों स्लो हो रही हो, याद नहीं हमने ये पढ़ा था, वो आपको वो बातें याद कराएंगी, फिर आपका हौसला बुलंद हो जाता है, फिर आप चलने लगते। तो इंसान को सपोर्ट चाहिए होती है, अल्लाह हम सब तेरे से मदद मांगते हैं, तेरी इबादत अच्छी तरीके से करें, इस पे तेरी मदद मांगते हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह की मदद के बगैर इंसान नहीं चल सकता, इसलिए अल्लाह ताला से मदद मांगे। अल्लाह वो है जो इस बात से खुश होता है कि इंसान अल्लाह ताला से मदद मांगे। आप देखें, इंसानों से आप किसी से मदद मांगेंगे, इंसानों को कोई बात कहें तो वो नाराज होते हैं, अब फिर मांगने आ गई, फिर मांगने आ गई, इसका यही काम है, हमेशा मांगने के लिए खड़ी जाती। अल्लाह ताला ऐसा है जो कभी मांगने से, बंदे के मांगने से नाराज नहीं होता, तो खुश होता है। वो नाराज किस बात से होता है? अगर बंदा नहीं मांगता, नहीं मांगता उसे। तो अब हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह से? तौफीक मांग रहे हैं इताअत की, मदद मांग रहे हैं कि हम ये सारे नेकी के काम हम कर लें, अल्लाह तेरी अच्छी इबादत हम कर लें। हम मदद मांगते हैं, छोटे बड़े सब कामों में तेरे से मदद मांगते हैं। तो अब हम किससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं? देखें, पहले इनडायरेक्ट बात हो रही थी ना, पहले हम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है। फिर हमने डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात शुरू कर दी। इसका मतलब अल्लाह से बात करने में कोई रुकावट नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना, किसी से मदद मांगनी, अल्लाह से मदद मांगनी है तो किसी का वास्ता पकड़ो, अल्लाह तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तुम तो बड़े गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हारी कहां सुनेगा। ओ दीवानो, देखो तो सही तुम या कनस्ताइन में क्या कहते हो, देखो तो सही, तुम तो खुद कहते हो हर दिन हर रकत में, कहते हो हम तेरे से मदद मांगते हैं। लेकर आओ ना उस वक्त कोई वसीला अंदर, लेकर आओ किसी को अंदर डालो, फिर मांगना अल्लाह से। अल्लाह ने तो तुम्हें शुरू सूरा पहले कुरान में दर्स ही सबसे पहला ये दे दिया कि जब कुछ चाहिए होगा ना, मदद चाहिए होगी, तो मेरे बंदे अल्लाह की तरफ आ जाना, अल्लाह से कहना अल्लाह मुझे मदद चाहिए, मांगना मुझसे। क्या अल्लाह ने यहाँ पे कहा मदद चाहिए हुई तो फलां जगह पे पहले जाना, उससे कहना, वो फिर मुझसे कहेगा तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूं, चाहे वो कोई है, वलीउल्लाह है, कोई फलां है, कोई फलां, कोई भी है। क्या अल्लाह ने ये कहा? फिर हम क्यों ये कहते हैं मेरी तो सुनी नहीं जाती, आप ही दुआ करें। ठीक है, किसी को आप कह सकते हैं कि आप दुआ करें मेरे लिए, मगर ये सोचना कि मेरी नहीं सुनी जाती, फलां करेगा तो फिर होगी, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पाक तो वो अजीम रब है, अल्लाह सुभाना ताला ने तो शैतान की भी दुआ सुन ली, जिसने कहा कि मुझे कयामत तक मोहलत दे दे अल्लाह के, मैं इनको बहकाऊं, तो अल्लाह ने कहा हाँ ठीक है जा। तो आज क्या हम उससे भी गए गुजरे होंगे कि हम अल्लाह से इतने मायूस हो चुके कि हम अल्लाह से मांगते ही नहीं, और कहते दूसरे हमारे लिए मांग ली, हमने नहीं मांगनी। देखो तो सही आपको अल्लाह ताला क्या सिखा रहा है कि कहो अल्लाह हमें मदद चाहिए, और डायरेक्ट अल्लाह से कहो, बात करो अल्लाह से, नहीं हमें नहीं आता मांगना। भाई जिस जुबान में भी आता है मांगो, जैसे भी कहना आता है मांगो, दिल में कहो, ऊंची आवाज में कहो, हल्की आवाज में कहो, कहो टूटे फूटे अल्फाज में कहो, लेकिन जिसके साथ आपको कोई ताल्लुक होता है ना, उससे ही आप बात करते हैं ना, जिसे आप शर्माते हैं, जिसके साथ आपको कंफर्टेबल नहीं होते, फिर आप कहते हैं कोई और ही जाके उससे बात कर ले, मैं नहीं डायरेक्ट कर सकती। तो जब आपने अल्लाह ताला की जात को समझ लिया और उससे मोहब्बत हो गई, तो फिर जब इबादत हमने कह दिया ना या का नाबुद, तो हमने बता दिया कि हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत। उसके बाद जिससे मोहब्बत होती, क्या दिल नहीं करता उससे बात करने, बताएं, नहीं दिल करता? क्या दिल करता है ना कि इससे तो बातें ऐसी हों कि वक्त रुक जाए, बातें खत्म नहीं होंगी। ऐसा होता है ना, जिनसे हमें प्यार होता है पूरी पूरी रात भी उनसे बातें करते रहते हैं, तो वो फजर हो जाती है, वक्त का ही नहीं पता चलता, पूरी रात गुजर गई, नींद भी हमें नहीं आती, फिर उस वक्त हम उनके साथ बैठ के बस गपशप ही करते रहते हैं, है ना? ऐसे हमारे कई प्यारे रिश्ते होते हैं ना। तो अल्लाह ताला से जिसको इंतहा दर्जे की मोहब्बत है, कैसे हो सकता है वो अल्लाह से ही बात ना करना चाहे, और बस लोगों को पकड़े, कभी उस कब्र पे चला गया, कभी उस पीर के चला गया, कभी उसके चला गया, और उन जगहों पे जाके कह रहे हैं जी आप मांगे हमारे लिए, हम तो नहीं अपने लिए मांग सकते। तो फिर ये क्यों कहते हो जब नमाज में खड़े होते हैं या कनस्ताइन? इसके लिए भी ढूंढ लाओ ना कोई बाबों को, हाँ वो ही आपके लिए कह दें। तो अल्लाह ने सिखा दिया, जब मांगो मुझसे मांगो, डायरेक्ट मांगो, किसी की भी नहीं जरूरत है बीच में, क्योंकि नमाज में हर दफा आप ये कहते हो, कुरान खोलते हो तो आप ये कहते हो या कनस्ताइन, आपने डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन बना लिया है और अल्लाह ने आपको सिखा दिया है, किसी और की जरूरत नहीं है मेरी तरफ आने के लिए, मुझसे मांगने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां पे हम कहते हैं या का, सिर्फ तुझसे अल्लाह हम मदद चाहते हैं, डायरेक्ट हमने अल्लाह से बात की है। देख ले, हम कहते हैं ना लोगों को बड़े पहुंचे हुए, सब पहुंचे हुए हैं, जो भी अल्लाह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है वो सब पहुंच जाते हैं अल्लाह तक, अल्लाह ताला तक लाइन लगाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, सब अल्लाह से बात कर सकते हैं। एक काफिर भी अल्लाह को पुकारता है तो आप कुरान में पढ़ेंगे अल्लाह उसकी भी सुनता है। तो इय्याक नस्ताईन, अल्लाह इताअत के सारे कामों में और अपने भी तमाम कामों में मुझे तेरी मदद चाहिए, ठीक है। और यहां से हमें समझ आ गई कि हमने मांगना कैसे है। अब यहां से हमें एक और बात भी पता चलती है कि यहां पे भी अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि बंदा मांगे। अल्लाह ताला को ये अच्छा लगता है कि बंदा मांगे। एक हदीस कुदसी में आता है, हदीस कुदसी किस हदीस को कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने फरमाई लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला ये फरमाता है। वो कुरान में नहीं है अल्फाज, लेकिन वो अल्लाह की बात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदो तुम सब फकीर हो सिवाय उसके जिसको मैं गनी कर दूं, तो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। क्या फरमाया, तुम मुझसे मांगो, ए मेरे बंदो तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत, तो तुम मुझसे हिदायत मांगो मैं तुमसे हिदायत दूंगा। ए मेरे बंदो तुम सब गुनाहगार हो सिवाय जिसको मैं बचा लूं, तो तुम में से जो ये जाने कि मैं माफ करने पर कुदरत रखता हूं और उसने मुझसे माफी चाही, माफी मांगी, मैं उसको माफ कर देता हूं और मुझे परवाह नहीं होती। अगर तुम में से तुम्हारा पहला और आखिरी आदमी और जिंदा और मुर्दा और खुश्क और तर, यानी सब के सब इसमें आ गए ना, मेरे बंदों में सबसे मुत्तकी आदमी की दिल की तरह हो जाए, तो मेरी बादशाही में मच्छर के पर के बराबर भी इजाफा नहीं होता। और अगर तुम में से पहला और आखिरी आदमी जिंदा मुर्दा खुश तर सब के सब सबसे बदबख्त आदमी के दिल की तरह हो जाए, तब भी मेरी बादशाही में मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं होती। तुम्हारा पहला और आखिरी आदमी जिंदा मुर्दा खुश तर एक मैदान में जमा हो जाए, तुम्हें से हर इंसान अपनी आखिरी दर्जे की तमन्ना मांगे और मैं तुम्हें से हर मांगने वाले का सवाल पूरा कर दूं, तो भी मेरी बादशाहत में कमी नहीं होगी। अल्लाह की हाँ जरा सी भी कमी नहीं होती। तो अल्लाह को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बकील नहीं है कि जैसे होता है ना, हम दुनिया में किसे मांगे उसका दिल ही इतना छोटा होता है, कहता हाय क्यों दूं, पहले भी दिया था, अब पहले का पहले हिसाब दो फिर और दूंगा। बुखल करते हैं ना, इंसान होते बुखल करते हैं। अल्लाह सखी है, वो गनी है, ठीक है। तो अल्लाह को देने में कोई मसला नहीं। दूसरा क्या चीज होती है, कब नहीं इंसान देता, वो कहता है हाय मेरे पास ना कमी हो जाए, कहते मेरे पास मेरे इतने पैसे हैं, इसको दे दिए तो मेरे पास कम हो जाए, अल्लाह के तो खजाने लामहदूद है, वो क्यों ना दे, उसको देने में क्या डर है, उसके तो कोई कमी नहीं आनी, लिहाजा उसको ये भी खौफ नहीं कि मैंने इनको दे दिया तो आए मेरे पास काम हो जाएगा, तो वो क्यों ना देगा, उसके तो खजाने भरे पड़े। फिर तीसरी क्या बात होती है कि इंसान कब नहीं देता, जब वो कहता है कि अगर दे दिया तो फलां मेरे से पूछेगा क्यों दे दिया, तो वो फलां को मैं क्या जवाब दूंगी, फलां को क्या जवाब दूंगी, हस्बैंड को क्या कहूंगी कि क्यों यहाँ पे इतने दिए। अल्लाह ताला को तो कोई किसी से मशवरे करने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो तो जिसको चाहे जितना भी इनायत करे, तो फिर क्यों ना हम उससे मांगे। तो बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं या औरत हैं, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, सब अल्लाह से ही मांगे। और अल्लाह हमसे ये एतराफ कराता है इस आयत के अंदर, बहुत बड़ा एतराफ। क्या कुछ सोचे, जब हमने अल्लाह से मदद मांगी, मदद कौन मांगता है, जो अपने आप को कमजोर फील करता है, जिसको लगता है कि मैं खुद नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या सिखाया कि तुम ये मान जाओ ना कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे मदद चाहिए। देखिए ना, मदद किसको चाहिए होती है? खुद सोचें, दुनिया में भी किसको मदद चाहिए होती है? जो ज़हीफ है, कमजोर है, जो अपना काम खुद नहीं कर सकता। अक्सर देखते हैं बच्चों को मदद चाहिए होती है, बूढ़ों को मदद चाहिए होती है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान ये मान जाए, तो इंसान कुरान खोलते ही अपनी आजी का इतराफ करता है कि अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बेबस हूँ, अल्लाह मेरे हाथ में कोई चीज नहीं है, मुझे तेरी मदद चाहिए। किस में मदद चाहिए? हर चीज में ही मदद चाहिए, हर चीज में। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं कहा गया, हर चीज में मदद चाहिए अल्लाह। ज़ाहिर है इताअत में, बंदगी में तो चाहिए, नेकी के कामों में। अल्लाह मुझे तो हर चीज में ही चाहिए, अपनी जिंदगी गुजारने में चाहिए, अपने उठने बैठने में चाहिए, अपनी जिंदगी के हर काम में चाहिए। ये इंसान डायरेक्ट अल्लाह ताला से कह रहा है। सोचें, अल्लाह ने एक जर्रे को, एक इंसान एक जर्रा, जर्रे से भी कम चीज होगी। आप सोचें जमीन पे मैं और आप क्या है, क्या है जमीन पे? एक जर्रे से ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। अगर पूरी जमीन को देखा जाए, करोड़ों अरबों आदमियों इंसानों के अंदर हम क्या हैं? एक छोटी सी इंसान, उस एक एक इंसान को अल्लाह ने कितनी अहमियत दी है, कितना अल्लाह ताला ने इसको ऑनर दिया है कि ये डायरेक्ट अल्लाह से बात कर सके। आप देखें दुनिया में कोई बड़ी जगह पे चला जाता, वो कहता नहीं मेरे तक पहुंचने के, मैं नहीं किसी से बात करता, मेरे पास नहीं है टाइम, चलो जाओ मेरे सेक्रेटरी से बात करो, चलो जाओ मेरे फलां से बात करो, वो तो बस बड़े बड़े लोगों से बात करता है। यहाँ पे हर एक, मैंने आपको बताती है ना, मर्द औरत, कूड़ा जवान, अनपढ़, बेपढ़ा लिखा, हर पढ़ा लिखा सबको अल्लाह ताला ने डायरेक्ट एक्सेस दे दिया। जो अल्लाह से बात करना चाहे, जब करना चाहे करें, ना दिन और रात की कोई कैद है, ना उम्र की कोई कैद है, ना पढ़ाई की कोई कैद है, किसी चीज की भी कैद नहीं। आप जिस हाल में भी हैं अल्लाह को पुकार सकते हैं। ना ये कोई कैद है कि नेक ही है तो वही मेरे पास आएंगे, जो बहुत गुनाहगार है ना वो दूर रहे मेरे पास से, खबरदार जो मेरे करीब आए, खबरदार जो मुझसे बात की, उनको भी नहीं। सब के लिए ये दरवाजे खुले हैं, या कनस्ताइन के, फिर भी ना हम मांगे उससे मदद, और फिर भी हम अपने मसलों के लिए हर तरफ भागे, लेकिन एक अल्लाह को ही ना पुकारे, कितनी बदनसीबी है ना। जहानों के मालिक ने, रब्बुल आलमीन जो पूरे जहानों पे सिस्टम चला रहा है, एक चूंटी से लेके, एक वायरस से लेके, एक माइक्रोस्कोपिक कीड़े से लेकर वेल मछलियों और सूरज और चांद और सितारों और बड़े बड़े ह्यूज फरिश्तों तक के निजाम जो रब चला रहा है, उससे हम अपनी छोटी सी हाजत कहने में भी देर करते हैं, या ख्याल ही नहीं आता, या समझ ही नहीं है, या शर्माते हैं, क्या बात है कि उसी के पास नहीं जाते। तो ये बहुत बड़ा कलमा है, या का नाबुद व या का नस्ताइन, सारी तौहीद इसके अंदर आ गई। ला इलाहा इल्लल्लाह का खुलासा इसमें आ गया, जब आपने कह दिया या का नाबुद व या का नस्ताइन, अपना तो वेर भी बना लें, या का नाबुद व या का नस्ताइन, अल्लाह को वास्ते देते रहें कि अल्लाह तेरी तो इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी करते हैं। एक ऐसे ही बात बताती हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक हमारे पास एक बिल्ली है, तो उस बिल्ली को हमने बहुत, जब छोटी थी, बहुत छोटा सा किटन थी, तो तब हमने उसको लिया था, यानी कुछ चंद हफ्तों का। अच्छा, अब उससे एक मैंने बात सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब तो बिल्ली बड़ी हो गई, लेकिन मैं उसको प्यार क्यों करती हूँ? जब भी मैं उसको प्यार करने लगती हूँ तो मेरे जहन में एक बात होती है कि इसका तो कोई भी नहीं है, इसकी तो और बिल्लियां साथी भी नहीं है, इसने तो बहुत ही छोटे सी किटन लिया था, तो इसने तो अपनी माँ को भी नहीं देखा, ना और किसी को देखा, ये सिर्फ हमारे घर के अंदर ही रहती, इसने सिर्फ हमें देखा, समझ लें कि हम ही जैसे उसकी फैमिली। तो उस इस बात के ऊपर मुझे उस पर इतना प्यार आता है कि इसका तो और कोई है ही नहीं, इसकी तो सिर्फ हम ही हैं, तो हम ही ना इसको प्यार करेंगे, हम ही इसकी टेक केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? इसी चीज को आप रख के सोचें, जब इंसान कहता है या का नाबुद, तो वो बता रहा है अल्लाह ताला को, अल्लाह तेरे सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ। اور میرا تو کوئی خدا نہیں ہے, میں کدھر جاؤں پھر؟ اور اللہ میرے لیے تو مدد کرنے کے لیے اور کوئی نہیں, اللہ میں تو صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں, میں کس کے پاس جاؤں, کس کے در پہ جاؤں, کوئی بھی نہیں ہے میرا, صرف تیری. جب آپ اس طرح کہتے ہیں نا اور واقعی دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کو بھی پتا ہے کہ واقعی میرے اس بندے کے پاس کوئی اور در نہیں ہے جہاں یہ جائے. جبھی تو وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے نا کہ اس کا رب ایک ہے جو اس کو معاف کرتا ہے, تو یہ میرے پاس بار بار چل کے آ جاتا ہے, تو میں نے اس کو معاف کیا. یہ اس سے آپ یہ سوچیں کہ جب آپ نے یا کا کہہ دیا نا تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی. مت پھر جاؤ ادھر ادھر سہارے ڈھونڈو, مت پھر کہیں اور ماتھے ٹیکو, مت کسی اور کے آگے ہاتھ اٹھاؤ. ہاں آپ کسی سے ہیلپ کے لیے کہہ سکتے ہیں, مثلا آپ نے بچے کو کہا مجھے پانی دے دو, یہ بھی ایک ہیلپ ہی مانگنا ہے. لیکن جب آپ نے کسی کو کہا ہیلپ کے لیے یا کسی نے آپ کی ہیلپ کی, تو وہ بھی کس کے عزم سے کی؟ اگر وہ بچہ اٹھا, وہ بچہ چلا, وہ پانی لے کر آیا, وہ پانی کس نے دیا, وہ بچے کو چلایا کس نے, اس کو ہمت کس نے دی, اس کو یہ توفیق کس نے دی کہ وہ اٹھ جائے؟ اللہ نے دی ہے نا. تو پیچھے تو ساری چیزوں کی اللہ ہی ہے. جہاں سے بھی ہمیں کہیں سے بھی ہیلپ ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ڈالا ہوتا ہے. تو اس بات کو سمجھیں, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات, یہ تو ہمارے لیے بڑا پیارا کلمہ ہونا چاہیے, یا نعبد و یا نستعین. جب ہم کہیں تو اس میں اتنا پیار ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں جائیں پھر اور, یا نعبد و یا نستعین, کدھر جاؤں پھر میں اور, میرا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں, صرف تو ہی تو ہے جس کی میں عبادت کروں, صرف تو ہی تو ہے جس سے میں مدد مانگتا ہوں, کہاں جاؤں اور, تو ہی بتا, تو نے ہی تو یہ سکھایا, تیرے پاس نہ ہوں تو کدھر جاؤں. تو پھر اللہ کو بھی پیار آئے گا کہ میرے اس بندے کے پاس واقعی اور کوئی نہیں, اس کا تو میں ہی سہارا ہوں نا, تو وہ کیوں نہ مدد کرے گا. اگر سنسیریٹی چاہیے, اخلاص چاہیے اس بات کو کہنے کے لیے, وہ دل چاہیے جس میں واقعی صرف پھر اللہ ہی ہو اور نہ ہو, پھر بات سمجھ آ گئی. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, إياك